الحمد لله
Recording in
وكفى،
progress.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورة الأنعام کی ان آیات کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں مارت قرآن جلد نمبر 3 میں سے، جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں، یہ آیات نمبر 93 اور 94 ہیں. کل ان کے مجموعے کا ترجمہ پڑھنا ہم نے شروع کر دیا تھا آیت نمبر 90 سے، تو وہ ہم پڑھ چکے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون اس سے زیادہ ظالم ہے، کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس سے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا حالانکہ اللہ نے ایسے نہیں کہا تھا، تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے جھوٹ کی جو سب سے زیادہ بری شکل ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ کے بہت سارے درجے ہوتے ہیں. ایک انسان کسی چھوٹی سی بات کے بارے میں جھوٹ بول دے، اس کا درجہ کم ہوتا ہے اس جھوٹ کا، یعنی اس کا گناہ کم ہوتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولے کہ آپ سے نے ایسے فرمایا، ظاہر ہے اس کا درجہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ اللہ نے ایسے کیا، یہ سب سے زیادہ سنگین جھوٹ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ سزا اسی کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اس لیے کہ خواب جو ہے نا، اس وہ اللہ تعالیٰ براہ راست، اللہ تعالیٰ وہ خواب کسی کو دکھاتے ہیں، کوئی درمیان میں دوسرا بندہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے مجھے خواب دکھا دیا، فلاں نے مجھے خراب خواب دکھا دیا، حالانکہ اس نے تو خواب نہیں دکھایا تھا. ایسا نہیں ہوتا نا، خواب کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا، خواب صرف اور صرف اللہ دکھاتا ہے. تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا حالانکہ اللہ نے تو اس کو ایسا نہیں دکھایا، تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ بھی کہلائے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا، یہ کہہ رہا ہے کہ دیا، تو یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. تو وہ من اظلم، کون اس سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، او قالا، یا یہ کہے اوہی الیہ، وہی نازل ہوئی میری طرف، ولم یوحا الیہ شیئن، حالانکہ اس کی طرف وہی نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ من قالا، اور جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں عنقریب میں نازل کروں گا جیسا اللہ تعالی نے نازل کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے مثل جیسا اللہ نے نازل کیا تھا میں بھی نازل کر سکتا ہوں. یہ بات تو یہ کون سی بڑی بات ہے اس طرح کی باتیں کر دینا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، اور اگر تو دیکھے، یعنی اگر آپ دیکھیں جس وقت، از کا مطلب ہوتا ہے جب، اور لو کا مطلب اگر، ولو کا مطلب اگر، ترا آپ دیکھیں یا تو دیکھے، از جب الظالمون ظالموں کو، فی غمرات الموتی موت کی سختیوں کی حالت میں، جب موت ان کے اوپر आ रही होगी ना, उस वक्त को जो है जो सख्तियां उस वक्त होती हैं तो वो गमरातुल मौत कहलाती हैं। तो अगर आप उन जालिमों को यानी इन काफिरों को गमरातुल मौत के वक्त में देखें, वल मलाइकतु, इस हाल में ये वाव जो है वो और के मानी में इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पर हाल के मानी में, वाव हालिया, इस हाल में के अल मलाइकतु, जो मलाइका है, मलाइका की एक फौज है, एक बकायदा असाइंड टाइप है मलाइका की, जो कि इंसान की जान निकालने के ऊपर मामूर है, उनका काम ही जान निकालना है, ठीक है। और उसके उस ग्रुप के उस जमात के जो सरदार हैं वो हजरत इजराइल अलैहि सलाम है, ठीक है। यानी इजराइल अलैहि सलाम जो है वो पूरी टीम है उनकी अपनी, ठीक है। वो टीम जो है वो जान निकालने ही काम के ऊपर मामूर है। तो वल मलाइका, तो इस हाल में के मलाइका, बासितू ऐदीहिम, अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना बासितू, ठीक है, यानी किसी चीज को बढ़ाना जो है ना, ये बस्त करना कहलाता है, बस्त, बा सीन पौ, ठीक है। उसी तरह बढ़ाने वाले को बासित कहते हैं, बासित, अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम जो है वो बासित भी है, कि अल्लाह ताला किसी चीज को बढ़ाते हैं, और काबिज इसका ऑपोजिट है, कि अल्लाह ताला जो है वो किसी को कब्ज भी करते हैं, ठीक है, यानी उसको घटा देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो वही लफ्ज जो है वो यहाँ पर इन मलाइका के लिए इस्तेमाल हुआ कि अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं उनकी रूह को निकालने के लिए। अखरिजू अनफुसकुम, और हुक्म दे रहे हैं वो, यानी हाल ये चल रहा है कि वो हुक्म दे रहे हैं, अखरिजू अनफुसकुम, कि निकालो अपनी जाने यहां से, यानी अपने अंदर से अपनी जाने निकाल करके हमारे हवाले करो, क्योंकि कोई इंसान खुद हवाले नहीं करता, उनके हुक्म पे कोई अमल करके अपनी जान हवाले नहीं कर देगा, लेकिन एक होता है ना ऑर्डर देना, ताकि सिचुएशन जो है वो और ज्यादा इंटेंस हो जाए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कभी किसी को मारने के लिए अगर हाथ बढ़ाना है तो साथ साथ ये भी कहते रहते हैं, अभी बताता हूं मैं तुम्हें, अभी बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो ये जो बोलना है तो इससे क्या होगा कि पिटाई जो करनी है ना तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी, उसके ऊपर और खौफ जो है वो तारी होगा, ये बात सुन सुन करके, कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसी तरीके से ये उनको हुक्म भी दे रहे होंगे, ये भी कह रहे होंगे साथ साथ, निकालो अपनी जानों, निकालो अपनी जानों को। अलयौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूने, आज आज के दिन, अलयौम, अलयौम अरबी में, अलयौम चिकन के लिए खाली इस्तेमाल नहीं होता, वो तो एक कंपनी का नाम है ना अलियाउम, लेकिन बा मुहावरा इसका तर्जुमा क्या बनता है कि आज के दिन, दिस डे, ठीक है, तुजज़ौना अज़ाबल हूने, तुम्हें जजा मिलेगी, अज़ाबल हून, हून के अज़ाब की जजा मिलेगी, यानी ऐसा अज़ाब मिलेगा कि जो कि तुम्हें जलील कर देगा, ठीक है। यानी जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना, इहानत करना किसी की, यानी किसी को बहुत ही छोटा कर देना, किसी को बहुत ही जलील कर देना, रुसवा कर देना, तो उसको हम इहानत करना कहते हैं। तो वो इहानत का जो लफ्ज है वो अरबी के इसी से निकला, हाउन से, हवना, ठीक है। तो अजाब अलहूनी यानी इहानत वाला, जलील करने वाला अजाब तुम्हें बतौर जजा के दिया जाएगा आज के दिन। किस वजह से? बीमा, इस वजह से, बीमा का लफ्ज जो है वो बा मुहावरा तर्जुमा के इस वजह से, ठीक है, बसबब इसके, बीमा, कुंतुम तकूलूना अला अल्लाह गैर अल हक, कि तुम थे तकूलून, कुंतुम तुम थे तकूलून, तुम कहा करते थे अला अल्लाह ही, अल्लाह के बारे में, गैर अल हक, जो हक नहीं होता था, जो सच नहीं होता था ना, तुम अल्लाह के बारे में वो कहा करते थे। वकुंतुम अन आयाति ही तस्तकबिरून, और तुम थे, कुंतुम तुम थे अन आयाति ही, उसकी निशानियों से, यानी उनकी उसकी निशानियों के साथ तुम्हारा रवैया क्या था, तस्तकबिरून, तुम तकब्बुर किया करते थे, तुम ऐंठा करते थे, तुम ऐसे बिहेव किया करते थे कि जैसे तुम्हें इन आयात की कोई जरूरत नहीं है, इन आयात की तुम्हारे नजदीक कोई हैसियत नहीं है, इन निशानियों की, ये जो खुली खुली बातें समझा समझा के बातें भी की गई हैं और तुम्हें दलाइल भी दिए गए हैं और तुम्हें जो है वो इवन आज के दौर में तो साइंटिफिक प्रूफ भी तुम्हें दे दिए गए हैं, ठीक है, अकली दलाइल, नकली दलाइल, साइंसी दलाइल और जो है वो मुशाहिदाती दलाइल, के देखो क्या बनता है उन लोगों का जो कि अल्लाह की दीन को ठुकराते हैं, अल्लाह की दीन के खिलाफ अमल करते हैं, देखो क्या उनका हशर हुआ है दुनिया के अंदर भी। मरने के बाद तो तुम्हें नजर नहीं आएगा, दुनिया की बातें तो तुम्हें नजर आ रही है ना, लेकिन बिल्कुल ऐंठ जाते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास इन सब चीजों का, ये बेकार की बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं, मुझे, मेरे पास इनका टाइम नहीं है। ये क्या है तस्तक बेरून, कि तुम इन आयात के ऊपर जो है ना तुम तकब्बुर दिखाते हो, ठीक है, तो मरने के बाद जो है ये सब पता चल जाएगा कि तकब्बुर दिखाना जो है ना ये इग्नोर नहीं किया जा रहा था, ये सारी बातें जो है वो नोट हो रही थी और तुम्हारे खिलाफ जो है वो अजाब का अंबार जो है वो इनके नतीजे में इकट्ठा किया जा रहा था। वलकद जिएतमूना, और अलबत्ता यानी तहकीक के, जैसे वेरिली अंग्रेजी में इसका तर्जुमा कर देते हैं, और तहकीक के जिएतमूना कि तुम हमारे पास आ गए फुरादा, अकेले होकर के, बिल्कुल अकेले, ठीक है ना, दुनिया में तो तुम दोस्तियां यारियां एक साथ जो है वो अपने दोस्तों के साथ उठा बैठा करते थे और समझते थे कि बस हमने तो कभी जुदा होना ही नहीं है, लेकिन मौत हर एक से जुदा कर देती है, हर एक से अलग कर देगी और तुम सिर्फ अकेले ही अल्लाह के पास जाओगे, चाहे कोई इज्तिमाई मौत भी आई हो ना, कि कई लोग एक साथ हलाक हो गए हों, जलजला आया, बहुत सारी हलाकतें एक साथ हो गई, या कोई बम फट गया, बहुत सारे लोग एक साथ मर गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सबको अब जमात की शक्ल में पेश किया जा रहा है अल्लाह के सामने, वो तो कयामत के दिन होगा, जमात की शक्ल में एक मौका ऐसा होगा कि जमाती शक्ल में जो है पेश पेश हो रहे होंगे और एक अलग मौका होगा जिसके अंदर के अलग अलग सबका हिसाब हो रहा होगा, लेकिन मरने के बाद तो हर एक ने अकेला ही पेश होना है फुरादा, वहां पे कोई भी साथ नहीं होगा। जरा तस्वर तो करें ना हम कि जब जब वो वक्त हमारे ऊपर आएगा, ये सवाल नहीं है यहाँ पर कि अगर वो वक्त हमारे ऊपर आया तो हम क्या करेंगे, नहीं, अगर का सवाल ही नहीं है यहाँ पर, हर एक शख्स इंसान अच्छी तरीके से ये बात जानता है कि उसके ऊपर ये वक्त आएगा, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन, ठीक है, अभी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा या कुछ सालों के बाद आएगा, लेकिन आएगा, ठीक है ना, आएगा, हम सब के ऊपर आएगा जिस वक्त हम बिल्कुल तने तनहा, ठीक है, अगर हालात अच्छे हुए तो हमें जो है वो तने तनहा हमें गुस्ल दिया जाएगा, तने तनहा हमें जो है वो कफन पहनाया जाएगा, तने तनहा जो है वो हमें कब्र में उतारा जाएगा, और अगर हालात अच्छे ना हुए, अल्लाह आलम पता नहीं ये फसादी जो है दुनिया के अंदर क्या फसाद बरपा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं मुस्तकिल, अगर कोई बहुत बड़ा फसाद बरपा हो गया तो पता नहीं इज्तिमाही कब्र के अंदर इज्तिमाही तौर पे जो है वो बस डाल दिया जाए अंदर, या पता भी ना चले पता नहीं कहाँ गई बॉडी, ठीक है ना, तो ये नहीं पता हमें कि मौत कहाँ आएगी, मौत जो है वो कैसे आएगी और मौत के वक्त जो है वो हमारे साथ दुनिया में कैसा हिसाब किया जाएगा, लेकिन उसके बाद का हमें पता है कि लकद जिएतमूना फुरादा, कि तुम आ गए हमारे पास एक एक होकर के, कमा खलकनाकुम, जैसे कि हमने तुमको तख्लीक किया था, कमा जैसे खलकनाकुम हमने तुमको तख्लीक किया था, अव्वला मर्रा पहली दफा, फर्स्ट टाइम जैसे हमने तुमको बिल्कुल अलग अलग, ये नहीं कि हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन नहीं लगाई हुई थी अल्लाह ताला ने, ठीक है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं करी है, ठीक है, कि कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, वो फैक्ट्री के अंदर जो है ना वो मशीनें चल रही होती हैं और चीजें बन रही होती हैं और बन बन करके निकल रही होती हैं, नहीं, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है, कमा खलकनाकुम अल अव्वला मर्रतिन, ठीक है, जैसे पहली दफा तुमको बनाया था ना फुरादा, वैसे ही तुम्हें उठाया भी फुरादा जाएगा, व तरक तुम मा खवलनाकुम, और तुम्हारा ये हाल है कि तुम छोड़ आए हो ما خولناكم. जो हमने तुम्हें चीजें थोड़ी सी तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं उसको उर्दू में कन्फर करी थी, अंग्रेजी में कहते हैं, यानी थोड़ा सा हमने तुम्हारे ऊपर जो कहते हैं ना वो इनायत करी थी तुम्हें, ठीक है, थोड़ी सी जो हमने तुम पर इनायत करी थी ना वो तुम उनको छोड़ करके आ गए। वो तरक तुम मा खवलनाकुम, जो हमने तुम्हारे ऊपर इनायत करी थी ना तुम उनको तर्क करके दुनिया के अंदर ही आ गए हो, ठीक है। यहाँ पे अरबी लोग, हाँ ज्यादा कुंडा इनायत का लफ्ज जहन में भी आया, जहन में भी आया। अच्छा तो अरबी लोग जो है ना वो कभी कहते हैं ना छोड़ो छोड़ो, जब हम कहते हैं ना छोड़ छोड़ यार छोड़ यार, ठीक है, तो ये अरबी कहते हैं खली खली छोड़ छोड़ इसको, ठीक है। तो खवलनाकुम, जो हमने तुम्हारे ऊपर इनायत करी थी, वो तरक तुम मा खवलनाकुम वरा दुहूरिकुम, अपने पीठ के पीछे तुम उनको अपने पीठ पीछे छोड़ करके आ गए। वरा का मतलब पीछे, दुहूर ये पीठ को कहते हैं, पीठों को, दुहूरिकुम यानी तुम अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं आए, दोस्तों को क्या साथ लेकर के आते हैं, रिश्तेदारों को तुम क्या साथ लेकर के आते हैं, माँ बाप को या औलाद को तुम क्या साथ लेकर के आते हैं, वो जो तुम्हारा लिबास था ना तुम उसको भी छोड़ करके आ गए हो, वो जो तुम्हारे साथ हर वक्त रहती थी कोई चीज, फोन है, आजकल तो फोन के बगैर गुजारा नहीं, हर वक्त फोन साथ रहता है, किसी की जो है वो मजबूरी में साथ रहता है, किसी की जो है वो महबूबी में साथ रहता है, किसी की जो है वो आदत की वजह से साथ रहता है, किसी का वो भी साथ नहीं जाएगा, ये फोन साथ नहीं जाएगा, ठीक है ना, इसको भी तुम छोड़ करके हमारे पास आ गए हो बिल्कुल ही उर्यानन, ठीक है, बिल्कुल ही मुजर्रद शक्ल में आ गए हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। वमा नरा माकुम, और हम नहीं देखते माकुम तुम्हारे साथ, नरा पहले था ना तरा, ठीक है, कि तुम देखते हो, और यहाँ पर है नरा हम देखते हैं। वमा नरा, हम नहीं देखते माकुम तुम्हारे साथ शुफाकुम, शुफाकुम तुम्हारे जो शफी थे, यानी जो तुम्हारे बिहाफ पे शफात करने वाले तुमने अपनी तरफ से बनाए हुए थे कि ये मेरी बिहाफ पे मेरी तरफ से शफात कर देंगे, मेरा मेरी छुट्टी हो जाएगी, मेरा मेरा जो है ना वो मसला हल हो जाएगा, हम तो नहीं देखते, किधर है भाई वो सारे शुफा तुम्हारे, हमें तो नजर नहीं आ रहे। अल्लदीना ज़अमतुम, जिनके बारे में तुम्हारा गुमान था, ज़ुम था तुम्हारा, जिनके बारे में अन्नहुम फीकुम शुरका, कि वो इस मामले में तुम्हारे साझी होंगे, ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे मददगार होंगे इस मामले में, यानी तुम्हें हमारी तरफ से जो है ना वो जैसे होता है ना वो अब तो खैर ज्यादा नहीं सुनने में आता, लेकिन जैसे इमिग्रेशन के ऊपर आपको जाना है और आपके साथ जो है ना वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इमिग्रेशन पे रोक ली जाएंगी, तो हमारे मुल्कों में ऐसा होता है भाई आपको कोई जानने वाला इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में है या जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में है, तो उसको पहले से फोन कर देते हैं कि हाँ भी मैं उस वक्त इमिग्रेशन में आ रहा हूँ, आप भी आ जाएं, आप जो है ना यहाँ से मेरे सामान को गुजारने में मेरी मदद कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो आते हैं, वो अपनी असर रसूख की वजह से जो है वो के साथ जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर को कह देते हैं कि हाँ भाई ये मेरा जाने वाला है इनको जाने दो, हालांकि कोई गड़बड़ चीज लेके जा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं जाने दो जाने दो, ठीक है। तो एक दफा हम जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, तो लाहौर कहाँ का शहर है, पाकिस्तान का, ठीक है, तो उस दिन जो है ना वो लगता है कोई नेक बंदा शायद वहां पे मौजूद था जिसने किसी का असर रसूख कबूल नहीं किया था, ठीक है, तो उस दिन जो है ना वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो गुड्स डिक्लेयर वाले जो जगह होती है ना वहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर शराब की बोतलें, अंबार लगा हुआ था शराब की बोतलों का, शराब की बोतलों का अंबार लगा हुआ था वहां पे, हम हैरान ये किधर से, हालांकि लाहौर पहली दफा तो नहीं गए थे, कई दफा लाहौर जा चुके हैं, उसके बाद भी कई दफा लाहौर जा चुके हैं, कभी भी नजर नहीं आई शराब की बोतलें इस तरह से पड़ी हुई, उस दिन कहां से पड़ी हुई, अभी मेरे दिल में पहली दफा एक ख्याल आया, पता नहीं अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत क्या थी उसके अंदर, लेकिन क्या पता कि उस दिन कोई नेक इमिग्रेशन ऑफिसर था, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा इन शराब की बोतलों को, उसने सबको पकड़ पकड़ करके जो है वो वहां पे अंबार लगा दिया था, क्या बाकी उसके बाद लोग मुसलमान हो गए नेक हो गए, आइंदा जो है वो शराब की बोतलें आनी बंद हो गई, नहीं वो ये तो ऐसा तो नहीं हो गया, उसके बाद लोगों ने शराब लाना बंद कर दी, बाद में जो है वो गुजर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मामला है। खैर उस दिन पता नहीं कहाँ से आ गई है सारी की सारी। तो इस तरह नहीं होगा क़यामत के दिन कि जो शुफा होंगे ना, ये नहीं आकर के तुम्हें वहां से प्रोटोकॉल के साथ तुम्हें वहां से फारग करवा देंगे। लकद तक़त्तअ बैनकुम, अलबत्ता मुनक़ता हो गया, कता हो गया तुम्हारा इलाका, यहाँ पे इलाके से वो यानी हाँ तुम्हारे दरमियान ये जो है कता ताल्लुक हो गया तुम्हारे और तुम्हारे जो सो कॉल्ड शुफात है ना उनके दरमियान, बैनकुम दरमियान तुम्हारे आपस में कता ताल्लुक हो गया। अब वह वल्ला अनकुम, और उन्होंने तुम्हें ठेंगा दिखा दिया, उन्होंने तुम्हें यानी हरी झंडी, हमारे यहाँ कहते हैं हरी झंडी दिखा दी, यानी बाय बाय टाटा, हम तुम्हें तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हम, ठीक है। वो वल्ला अनकुम, उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया, उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया। मा कुन तुम तजमून जो दावे के तुम किया करते थे, यानी जो तुम जिनके ऊपर तुम भरोसे किया करते थे, जोम था तुम्हारा कि नहीं ये मेरी मदद कर लेंगे, ये मुझे छुड़ा लेंगे वहां पर, ये मुझे पास करवा देंगे, ये इन सब ने तुम्हें धोखा दे दिया, ये अब नजर ही नहीं आते, गायब ही हो गए सारे के सारे, ठीक है। देखिए दुनिया में अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि हम कोई इस किस्म की हरकत करके समझ रहे हो कि कोई आके हमें बचा रहेगा, ले और वो जगह जाहिर है जहां बचाने की जरूरत पड़ती है वो कोई क्रिटिकल किस्म की जगह होती है ना, वो कोई बच्चों का खेल तो नहीं होता कि हाँ भाई वहां पे आपको कोई बचाने के लिए आ जाए। भाई बच्चों के खेल में आपको बचाने की क्या जरूरत है, बचाने की जरूरत तो वहां पड़ती है जहां पे कि इंतहाई मुश्किल सिचुएशन से गुजरना आपको पता होता है। क्या जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी जब अमरीका जाते हैं, ठीक है ना, या ये कि आम मुसलमान को भी ये कह सकते हैं कि जब अमेरिका जाते हैं ना, मुझे आजकल पिछले 2 सालों का तो नहीं पता लेकिन उससे पहले अमेरिकन इमिग्रेशन, यूएस इमिग्रेशन, ओहो उससे ज्यादा खौफनाक जगह कोई नहीं होती थी, पता नहीं क्या करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि मुसलमान है, दाढ़ी भी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, और दहशतगर्द का जो है वो पहले से एक दुनिया जहां के अंदर लेबल भी लगा हुआ है। तो अब वहां पे जाएंगे पता नहीं वो क्या बोलेगा, क्या पूछेगा, क्या पूछेगी, उसके बाद वो क्या करेगी। हमने तो बहुत सारे लोगों के वाकयात सुने अपने करीबी लोगों की भी, कि भाई उठा करके उनको चलो भाई चलो किसी को छोटी इंटरोगेशन के सेल में डाला जा रहा है, किसी को बड़े इंटरोगेशन के सेल में डाला जा रहा है, किसी को तो सुना कि बिल्कुल ही बंद कमरे में उनको पहुंचा दिया गया, और जो है ना वो वहां पे जो है वो कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नहीं बैठा हुआ उनके साथ, उनको जो है वहां से ग्रिल किया जा रहा है, पीछे से जो है ना वो आवाजें आ रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनको ग्रिल किया जा रहा है। तो यूएस इमिग्रेशन ये वन प्लेस है दुनिया के अंदर कि जहां पे गुजरने से पहले जो है ना वो अच्छे अच्छे जो है वो फिक्रमंद हो रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, हो सकता है डिपोर्ट ही कर दें वहां से उठा करके, ठीक है, वापस आना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे उसके बाद। तो इस किस्म की कोई सिचुएशन जो है ना उसमें फिर हेल्पर की जरूरत पड़ती है, और अगर हेल्पर साहब उस दिन झंडी दिखा जाए ना आए तो फिर क्या होगा उसके बाद में, पता है कि मैंने गड़बड़ करी हुई। गड़बड़ जिसने ना करी हो उसको को थोड़ी मसले होते हैं, यूएस इमिग्रेशन में तो गड़बड़ आपने ये करी हुई है कि ना उस बिल्ला गड़बड़ तो ये नहीं है, लेकिन उनके एतबार से गड़बड़ आपने ये करी हुई है कि आप मुसलमान हैं, ये आपकी गड़बड़ है, ठीक है, कि आप जो है वो दाढ़ी वाले हैं ये आपकी गड़बड़ है, या आप जो है बुरके वाली हैं ये आपकी गड़बड़ है, ठीक है ना, या आप जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं ये आपकी गड़बड़ है। वैसे तो यूएस पासपोर्ट होल्डर के साथ ही उन्होंने सब कुछ किया जो किया, ठीक है, लेकिन ये तो वहां का एक, मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा था कि वहां पर मुसलमान होना गड़बड़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मुसलमान होना हमारे नजदीक कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जिसको पता हो कि जी उसने जो है वो स्मगल्ड गुड्स जो है वो लेके जाना चाह रहा है इमिग्रेशन के अंदर से, तो फिर वो मुसीबत में होता है। खुलासे तफसीर में हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि और हम जो गम ना करने को और सब्र करने को आपको कहते हैं ना, तो उसकी वजह यह है कि सब अंबिया ने ऐसा ही किया है, ठीक है, यानी ये तफसीरन हजरत थानवी रहमतुल्लाह लिख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो बार बार नबी अलैहिस्सलाम को पिछले अंबिया के वाकयात बता रहे हैं तो उसकी वजह क्या होती है कि गम ना करें, फिक्र ना करें, यू आर नॉट द ओनली वन हियर, यू आर नॉट द फर्स्ट वन, ठीक है, जिसको के ऐसे हालात से गुजरना पड़ रहा है। आपसे पहले जितने भी आए उन सबको ऐसे हालात से गुजरना पड़ा है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम बेशक, किसी को कत्ल किया गया, किसी को कत्ल नहीं किया गया। तो जाहिर है जिसको कत्ल करने की नौबत आ गई वो ज्यादा मुश्किल हालात में था, जिसको कत्ल ना किया गया वो कम मुश्किल हालात में था, किसी को और तरीके से। यानी आप सोचो ना, नबी अलैहिस्सलाम जब हजरत आयश हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम को वरका बिन नौफिल के पास लेकर के गई, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम को कि जिस दिन आपको मक्का मुकरमा से निकाला जाएगा तो अगर मैं उस दिन जिंदा हुआ तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम को हैरानी हुई कि क्या ये लोग मुझे मक्का मुकरमा से निकाल देंगे, ये तो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, ये तो मुझे इतनी इज्जत देते हैं, सादिक भी कहते हैं, अमीन भी कहते हैं, अपनी अमानती भी मेरे पास रखवाते हैं और मुझसे जो है वो अपने फैसले भी करवाने के लिए तैयार रहते हैं, और मुझे तो वो गोया कि मैं तो उनकी आंखों का तारा हूं, राइट, ये मुझे निकाल देंगे मक्का मुकरमा से। तो वरका बिन नौफिल ने क्या क्या जवाब दिया था, हाँ जो भी ये काम करता है उसके साथ ऐसा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है कि आपको निकाल देंगे, आपकी तरह जितने भी पहले आए ना उनको भी इसी तरीके से वन वे और दी अदर उनको जो है ना वो मुश्किलात उठानी पड़ी, मुसीबतें उठानी पड़ी, चाहे घर बार बिल्कुल छोड़ के जाना पड़ा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत करी, ठीक है, लूत अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत करी, हर एक ने ऐसी फिजिकल हिजरत नहीं भी करी लेकिन फिर भी किसी ना किसी शक्ल में उनको तकलीफें और अजियतें मिली। ठीक है, तो ये सारे वाकया जो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कुरान मजीद में बताते हैं या उनके उसके अलावा जो है वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से बताते रहे, तो उसका एक मकसद था, बिला मकसद नहीं था, ये कहानियां सुनाना मकसद नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम को लोरियां देना मकसद नहीं था, ठीक है, वो क्या था कि आप सब्र करें, गम ना करें। ठीक है, तो जो बड़े होते हैं ना, जैसे नबी अलैहिस्सलाम का बड़ा कौन था, अल्लाह, आपसे बड़ा तो कोई और था ही नहीं, इवन मलाइका के जो उलुल अजम मलाइका थे वो भी नबी अलैहिस्सलाम से कम दर्जे के, तो आप से ऊपर कौन, अल्लाह। तो बड़ा जो है जो भी होता है बड़ा, वो अपने जेरे तरबियत को या अपने छोटे को या अपनी औलाद को या अपनी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को, अपने शागिर्द को, अपने मुरीद को, वो ये बातें कहता है, सबर करो, सबर करो, गम ना करो। और इसको एम्फेसाइज करने के लिए या और जो है वो इसको रीअश्योर करने के लिए ऐसी बातें भी बताता है कि भाई पहले भी तो ऐसा हुआ, उनके साथ भी तो ऐसा हुआ, देखें ये तो यहाँ का दस्तूर है, ये तो ऐसा होता ही है ना, किसी का इंतकाल हो जाए कहते हैं ना हम तो यहाँ पे बस सबका चल चलाव है, सबने जाना ही है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, आप चुप चुप हो जाएं, आप आपको कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बातें करने की, आपको तो एहसास ही नहीं है मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं, आपको तो एहसास ही नहीं है मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, आपके ऊपर को थोड़ी गुजरी है ये चीज जो मेरे ऊपर गुजर रही है, राइट। ये अगर कोई छोटा अपने बड़े को ऐसे जवाब देना तो ये बुरा जवाब होता है और ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि ऐसे जवाब दिया जाए कि आप अपनी नसीहतें अपने पास रखें, ठीक है, तो बड़े का ये काम है वो ऐसे ही तसल्लियां दे, ऐसे ही जो है वो तलकीन करता रहे, छोटे का ये काम का क्या काम है, अदब क्या है और फायदा क्या है छोटे का, वो सर झुका करके इस बात को सुने और इस बात को खाली एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल ना दे, बल्कि इसके मुताबिक फिर अपने आप को बर्दाश्त, अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करे और सब्र करे भी, क्योंकि अगर अल्लाह ताला तो ये काम कर रहे थे कि पुराने वाकयात सुना रहे थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अगर नाऊज़ बिल्ला एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते तो ये तो अल्लाह का समझाना, अल्लाह ताला का बुझाना, ये तो बेकार हो गया ना, फिर नबी अलैहिस्सलाम को तो कोई फायदा ना हुआ ना, तो अल्लाह ताला क्या बेफायदा कोई काम करते हैं, नहीं बेफायदा काम नहीं किया, क्यों, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन सब चीजों से फिर बाकायदा सबक हासिल किया और अपने अहवाल को तब्दील किया, सबर किया, ठीक है, तो ये नहीं है कि हाँ अभी चुप करके सुन लो और जी 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 जैसे कि कोई गलत काम कोई कोई गलत बात कर रहा हो तो हम बड़ा है, अगर गलत बात कर रहा है तो हम भी यही कहते हैं कि आप सुन लिया करें, बस सर झुका के जी 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 कर लिया करें, लेकिन अमल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गलत बात कर रहा है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपको तलकीन कर रहा है और समझा रहा है और पुराने वाकयात बता करके आपको हौसला दे रहा है और आप जो है वो सर झुका के जी 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 और करना कुछ नहीं है उसके ऊपर, सुनना कुछ नहीं है उसको। ये आपकी अपनी बदकिस्मती होगी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो फरमाया कि हम जो गम ना करने को और सबर करने को कहते हैं, तो वजह यह है कि सब अंबिया ने ऐसा ही किया है। ठीक है, तो चुनाचे ये हजरात जिनका जिक्र है ऊपर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के सारे ईसा अलैहिस्सलाम तक जिनका जिक्र ऊपर था पिछली आयात में, ये ऐसे थे कि जिनको अल्लाह ताला ने इस सबर की हिदायत की थी। अच्छा, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की थी, किस चीज की हिदायत की थी? सबर की हिदायत की। तो अल्लाह ताला का बस यही काम है सबर की हिदायत करते रहना, और कुछ नहीं किया अल्लाह ताला ने, कोई और हिदायत नहीं करी, नहीं, बल्कि सबर की हिदायत ही में सारी की सारी हिदायत आ जाती है। सबर की हिदायत में सारी की सारी हिदायत आ जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबर जो है वो सिर्फ मुसीबत के ऊपर सबर करना सबर नहीं होता, बल्कि सबर जो है वो हर हाल में नेकी के ऊपर डटे रहना और गुनाहों से बचते रहना, ये भी सबर है, बल्कि ये ज्यादा आला सबर है और ये ज्यादा अव्वल सबर है कि अच्छे हालात भी हो ना उसमें भी सबर करना है। अच्छे हालात में सबर कैसे करेंगे? हम तो मुसीबत पे सबर करना ही सबर समझते थे। नहीं, अच्छे हालात पे सबर करना भी, क्यों? इसलिए कि गुनाहों से बचना, सबरुन अलल मासिया, मासियत गुनाह को कहते हैं, गुनाह से बचना, अनिल मासिया गुनाह से बचना, ये भी सबर है। तो किसी को बड़े अच्छे यानी माल दौलत की रेल पेल हुई भी है, बड़े मजे के हालात चल रहे हैं, अब वो गुनाह में मुबतला हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? सबर नहीं किया उसने। ठीक है, तो हिदायत जो है ना वो सबर ही की हिदायत होती है क्योंकि उसमें हर चीज आ जाती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको सबर की हिदायत की थी, सो इस बाब में आप भी उन्हीं के तरीके सबर पर चलते रहिए। ठीक है, यानी मासियत से बचते रहिए, और अगर जब कोई मुसीबत आ जाए तो मुसीबत के ऊपर भी आप सबर करते रहिए। तो एक चीज मेरे में पास नहीं आ रहे, कहीं मुझे मिल जाए अगर, तो सबर अल ताआत, सबर अनिल मआसी और सबर अल मसाइब, मसाइब। ठीक है, सबर अल ताआत यानी नेकियों के ऊपर जमे रहना, ये सबर अल ताआत है, और गुनाहों से बचते रहना ये सबर अनिल मआसी है, और अगर मुसीबतें आ जाएं तो उनके ऊपर आपे से बाहर ना हो जाना, उल्टी उल्टी सीधी बातें करना ना शुरू कर देना, ना शुक्रिया के कलमात ना बोलते रहना, ये क्या है? ये सबर अलल मसाइब। ठीक है, तो अब ये तीन जो किस्म के सबर हैं इनके अंदर सब कुछ शामिल हो गया, पूरा दीन इनमें शामिल हो गया। ठीक है, ये नहीं कि भाई बड़े अच्छे हालात हो गए अब नेकी करनी छोड़ दी, अब तो जरा एंजॉयमेंट में जो है ना वो मैं इतना मसरूफ हो गया हूं, इतना जो है वो मुझे अपना ये करना है, अब नेकी का काम ही नहीं करना मुझे, नहीं, सबर अल ताआत। ठीक है, नेकी के ऊपर कायम रहना है चाहे जैसे भी अच्छे हालात आ जाए फिर भी। तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं के तरीके सबर पर चलिए, यानी जैसे आपके पीछे के अंबिया चले थे, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसकी हिदायत की गई है, आपको भी तो ये हिदायत अल्लाह ताला ने दी है ना सबर करने की हिदायत, क्योंकि इनसे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफा ना कोई जरर है कि जिसकी वजह से गम और बेसब्री हो, यानी जो मुश्किल आ रही हैं आपके ऊपर, इन मुश्किलात से जो है ना वो आपको गम करने की कोई जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि इनसे जो है ना वो कोई नफा नुकसान आपका ताल्लुक नहीं है, आपका नफा नुकसान तो आपके अपने अमाल के साथ है। यानी आपका रिएक्शन, जो हालात पर आपका रिएक्शन होता है ना, उससे आपका नफा नुकसान जो है वो वाबस्ता है, वाबस्ता है। तो ना कोई नफा है ना कोई जरर है जिसकी वजह से गम और बेसब्री हो आपको। और इस मजमून के इजहार के वास्ते उनसे तबलीग के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग कुरान पर कुछ मुआवजा नहीं चाहता। क्या मतलब? एक ये तो पीछे वाली बात से एक और बात याद आई कि नफा पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है? क्या मतलब कि जो हालात पेश आते हैं ना, तो अगर कोई साजगार हालात पेश आ रहे हैं तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि अच्छा हालात साजगार हैं, तो इसका मतलब ये है कि बड़ा नेक बंदा होगा यार अल्लाह ताला का, इसके तो हालात बड़े साजगार हैं, इसके तो कोई मुश्किल ही नहीं आती, इसको सारे इसके काम बनते चले जाते हैं, तो इस वजह से ये तो बड़ा नेक बंदा है। किसी के जो है वो काम अटक जाते हैं, किसी के काम जो है वो खराब हो जाते हैं, तो अब उसकी बुनियाद पर हम उसके बारे में फैसला कर रहे हैं कि यार ये तो ना कोई अल्लाह ताला का कोई नाफरमान बंदा होगा, गुनाहगार बंदा होगा, इसकी वजह से इसके मामला अटक गए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? हालात साजगार आ रहे हैं या हालात नासाज आ रहे हैं, इसकी बुनियाद पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता कि कोई नेक है या कोई बद है। किसकी बुनियाद पे फैसला किया जाएगा कि वो नेक है कि वो बद है, किसकी बुनियाद पे फैसला किया जाएगा? चले आप सभी तो कुछ पूछे ना कि आपको कितनी बात समझ में है। किस बुनियाद पे फैसला किया जाएगा कि वो शख्स नेक है या वो गुनाहगार है? किस बुनियाद पे फैसला किया जाएगा? फिर उसके ऊपर आने वाले हालात की बुनियाद पे फैसला नहीं किया जाएगा, ठीक है? जैसे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर हालात आए ना कि कोई बात ही नहीं मान रहा, कोई जो है वो आपको आपकी मदद ही कोई नहीं कर रहा, ठीक है? तो हालात आए नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो फिर किस बुनियाद पे फैसला किया जाएगा? एग्जैक्टली जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रिएक्शन टू दी हालात, रिएक्शन टू दी हालात, कि इसका उन हालात के ऊपर रद्द अमल क्या है, इसकी बुनियाद पे फैसला किया जाएगा कि ये नेक है कि ये गुनाहगार है। अगर तो अच्छे हालात आ रहे हैं लेकिन ये शुक्र नहीं कर रहा, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, शुक्र नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि नेक नहीं, ठीक है? और बुरे हालात आ रहे हैं लेकिन ये उनके ऊपर सबर अलल मसाइब नहीं कर रहा, बल्कि जो है वो नाशुक्री के अल्फाज बोल रहा है, और जो है वो अपनी जिंदगी में इसने नमाजें छोड़ दी, और जो है वो कुरान छोड़ दिया, और ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, बुरे हालात के आने की वजह से, इसका मतलब ये है कि नेक नहीं है, गुनाहगार, ठीक है? लेकिन अगर अच्छे हालात आए और ये उन हालात के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नेक है, और बुरे हालात आए तो इनके ऊपर ये सबर अलग मसाइब कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नेक है, ठीक है? तो रिएक्शन से पता चलता है, हालात से पता नहीं चलता, ठीक है? इंशाल्लाह सबके सवाल जवाब जो है वो सही ही होंगे, रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, रिएक्शन भी कह सकते हैं, नेकी पर इस्तेकामत भी कह सकते हैं, हालात में क्या रिएक्शन है एग्जैक्ट, ठीक है? जजाकअल्लाह। तो हालात से कोई थोड़ी आप गम करें कि मेरे ऊपर ऐसे हालात क्यों आ रहे हैं, आप गम ना करें बिल्कुल भी कि आपके ऊपर ऐसे हालात क्यों आ रहे हैं, ठीक है? और बेसब्री ना दिखाएं। इस मजमून के इजहार के वास्ते से उनसे तबलीग के वक्त आप ये भी कह दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग कुरान पर कुछ मुआवजा नहीं चाहता, जिसके मिलने से नफा और ना मिलने से जरर हो, बेगर्ज नसीहत, यानी मैंने कोई तनख्वाह नुखा नहीं रखी हुई, मैंने कोई जो है ना वो शर्त नहीं लगाई हुई कि ये पहले पहले मुझे तुम दोगे फिर मैं जो है वो तुम्हें नसीहत करूंगा फिर मैं तुम्हारी खैर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? तो जितने भी अंबिया थे ना, और अंबिया के जितने भी वरसा हैं, जितने भी अंबिया के रास्ते पर चलने वाले सही वारिस हैं, वो कभी भी नसीहत की बात को मशरूत नहीं करते, ठीक है? कि भाई मैं वहां पे बयान करने आऊंगा, पहले जो है ना वो आप जरा सेट करें कि आप कितने पैसे देंगे आप, ठीक है? जैसे आजकल दुनिया के अंदर बहुत हैं इस तरह के लोग ना, बड़े मशहूर हैं, बड़े बड़े उनके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल्स बुक किए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो कन्वेंशन सेंटर्स बुक किए जाते हैं, लेकिन दे डोंट कम विदाउट ए प्री सेट, क्या कहें उसको, प्री सेट पेमेंट। ठीक है जी, इनके इस बयान का जो है ना इतना, इतने का बयान होता है इनका है? लेकिन मजे की बात यह है, बल्कि अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों के सुनने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। तो बजाय तो बड़े कामयाब बने ना, और वो मुआवजा भी इसी वजह से ही रखते हैं क्योंकि सुनने वाले, उनको पता होता है आना है, उनको पता होता है कि इतने लोगों ने आना है सुनने के लिए, जब भी तो फिर उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं मुआवजा रख लेते हैं, तो बड़ी बड़ी वारे न्यारे हो जाएंगे फिर हमारे। ठीक है, तो पहले से प्रीसेट हदिया ये नहीं, हाँ बगैर मांगे हुए, बगैर जो है वो शर्तें लगाए हुए अगर कोई हदिया देता है, तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम को भी देते थे। नबी अलैहिस्सलाम को क्या लोग हदिया नहीं देते थे? नबी अलैहिस्सलाम के जितने और बशायख जो हैं उनको क्या हदिया नहीं मिलते थे? ठीक है, लेकिन वो प्री डिटरमिन नहीं होता था, ठीक है, मशरूत नहीं होता था कि दो वरना नहीं मैं तुम्हें नहीं कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ये बात, नात खां भी ऐसे करते हैं, तो यार नात खां ने क्या किसी को नसीहत करनी है, उन्होंने तो अपनी आवाज के जौहर दिखाने होते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बहरहाल नात खां साहब को तो आपको एक्सेप्शन बना लें के लिए, वैसे हम बात भी एक्सेप्शन की करने वाले हैं कि ये जो मदरसे के अंदर असातज़ा इकराम की तनख्वाह होती है, ठीक है, या कुरान मजीद पढ़ाने वाले जो कारी साहिबान या उलमा भी, जब जाहिर है आप लिफ्टी नहीं कराएंगे उनको, तो फिर वो उसी तरीके से उनको, बेचारे हैं तो हदीस के हाफिज हैं, तो जो है वो मसाइले फिका के जो है वो एक्सपर्ट, लेकिन कोई पूछने वाले ही नहीं उनसे, आप जो है वो आप हमारे क्या कहते हैं शरिया कंसल्टेंट बन जाएं, आप हमारे शरिया जो है वो एडवाइजर बन जाएं। ठीक है, कोई कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, तो फिर बेचारे बड़े बड़े मुफ्ती हजरात, बड़े बड़े आलिम हजरात जो हैं, अच्छे खासे जो है वो किताबी माहिर, वो बैठ करके बच्चों को अलिफ बाता पढ़ा रहे होते हैं। अलिफ बाता क्यों पढ़ा रहे होते हैं? इसी ना, कोई उनसे जो है वो फिकह मसाइल पूछने के लिए आते ही नहीं उनके पास। तो अब जो ये पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर उनके कोई तनख्वाह का सेट होना ये क्यों है? चले आप बताएं ये क्यों है, क्यों वो तनख्वाह सेट करते हैं? वो कुरान मजीद पढ़ाने के लिए कारी साहब आते हैं, आप उनकी तनख्वाह क्यों सेट करते हैं, या वो तनख्वाह लेकर के क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, या जो है वो मदरसे के अंदर जो असातिज़ा कराम पढ़ाते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं और मुस्लिम शरीफ पढ़ा रहे हैं, और जो है वो कुदूरी शरीफ पढ़ा रहे हैं, हिदायत शरीफ पढ़ा रहे हैं और अरबी अदब पढ़ा रहे हैं, ये उनकी तनख्वाह क्यों होती है? क्यों भाई, क्यों होती है भाई? फॉर देयर टाइम, नॉट फॉर इम्पार्टिंग इल्म, उनके वक्त के लिए तनख्वाह होती है। तो क्या नबी का वक्त नहीं था? नबी क्या कोई वक्त से बाहर रह करके कोई काम करते थे? वो किसी और डायमेंशन में काम करते थे जिसमें वक्त वॉज नॉट रेलिवेंट, कि मौलवी साहब जो हैं वो वक्त वाले हैं और बाकी जो है वो बेवक्त होते थे? नहीं, ये तो कोई जवाब ना हुआ, ये तो कोई जवाब ना हुआ भाई। उनकी भी दुनियावी जरूरियात हैं, अगर वो इसी में मशगूल रहेंगे कंप्लीटली तो उनका घर कैसे चलेगा? ठीक है, एग्जैक्टली ये ही रीजन है। ठीक है ना, कि ये जो दीन का काम करने वाले लोग होते हैं ना, ठीक है, इनको मन्नो सलवा आसमान से नहीं उतरता, ठीक है, इनके लिए मन्नो सलवा आसमान से नहीं उतरता, इनके लिए जो है वो लोग अपनी जमीनें, खैर वो पेश कर दें तो मसले सारे खत्म हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता कि जहां पे वो खड़े हुए हैं नीचे से जो है वो खाना उगना शुरू हो जाए। ये मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, नीचे से खाना उग रहा है जमीन के अंदर से, जहां भी जाएंगे साथ साथ खाना उगता जाएगा उनके लिए, वो भी खाते रहेंगे, अपने बच्चों को भी खिलाते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ना कभी पहले हुआ, ना अल्लाह के रसूलों के जमाने में ऐसा हुआ, और ना जो है वो अब हो सकता है ऐसा। ठीक है ना, एक मन्नो सलवा हुआ था वो मूसा अलैहि सलाम की कौम के लिए, वो भी एक महदूद वक्त, वो मन्नो सलवा उतरा था बस खलास, ना उससे पहले कभी उतरा ना उसके बाद कभी उतरा। ठीक है, तो ये जो तनख्वाह सेट की जाती है ना, ये तनख्वाह इसलिए सेट की जाती है क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। वरना तनख्वाह नहीं सेट होनी चाहिए, तनख्वाह सेट नहीं होनी चाहिए, ना कुरान पढ़ाने की तनख्वाह सेट होनी चाहिए, ना जो है वो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पढ़ाने की तनख्वाह सेट होनी चाहिए। क्यों क्यों सेट करते हैं तनख्वाह? क्यों उनको हम हदिया क्यों नहीं देते? उनकी जिम्मेदारी अपने जिम्मे क्यों नहीं उठाते? क्या हमें दीन की जरूरत नहीं है? जो गैर मौलवी हैं, जो गैर मुफ्ती हैं, जो गैर कारी हैं, क्या उनको कुरान की जरूरत नहीं है? राइट? क्या उनको जो है वो अपने बच्चों को दीन सिखाने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ाने की जरूरत नहीं है? क्या उनको जो है वो बुखारी शरीफ का इल्म अपने नस्लों में महफूज करने की जरूरत नहीं है? भाई जब जरूरत है तुम्हें किसी चीज की, तो तुम खुद उसके इल्म रखने वाले को तुम खुद सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? उसको क्यों तनख्वाह सेट करने की जरूरत पड़ जाती है? नहीं? तुम्हारी हुकूमत क्यों नहीं सपोर्ट करती? सो कॉल्ड तुम्हारी जो है वो कमबख्त लोग जो हैं ये धोखा देते हैं, ये इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है। राइट? तो भाई इस्लामी हुकूमत है तो इस्लाम को सपोर्ट क्यों नहीं करती? इस्लाम के इल्म को क्यों नहीं सपोर्ट करती? इस्लाम के इल्म हासिल करने वालों और इस्लाम के इल्म का आगे तरवीज इशात करने वालों को सपोर्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है, ना हुकूमत इस्लामी है, ना अवाम इस्लामी है। राइट? ना अवाम इस्लामी है। अब वो कहां से खाएंगे? या तो वो काम छोड़ दें, दीन का काम छोड़ दें, इल्म हासिल करना भी छोड़ दें और इल्म जो है वो सिखाना भी छोड़ दें, लग जाए वो भी रोटी चावल के काम के अंदर, दाल रोटी के काम के अंदर, ठीक है, वो भी लग जाए इसी काम के अंदर। फिर कौन करेगा बुखारी शरीफ का इल्म हासिल? कौन पढ़ाएगा बुखारी शरीफ आगे? कौन जो है वो कुरान मजीद की किरात का इल्म हासिल करेगा? कौन किरात का जो है वो इल्म आगे मुसलमानों के बच्चों को सिखाएगा, बड़ों को सिखाएगा? कौन सिखाएगा? नहीं सिखाएगा कोई भी। ये बदबख्ती जो है, तनख्वाहों की जो मुसीबत आई है, ये उनका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है, ये हमारा कसूर है। क्योंकि हम दीन को अहम नहीं समझते, हम दीन को अपनी जरूरत नहीं समझते। वो तो एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर कि वो कम तनख्वाह के ऊपर गुजारा कर लेते हैं और दुनिया के दूसरे प्रोफेशंस में नहीं जाते, अपनी औलादों को नहीं भेजते कि जहां पे उनको ज्यादा जो है वो माल पैसा जो है वो और दौलत और इज्जत जो है वो मिल सकती थी, बजाय इसके वो कुरान और हदीस के साथ ही लगे रहते हैं। अगर मेहनत करें ना, उनमें भी बहुत सारे ऐसे जहीन होते हैं जो कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जाहिल तो होते हैं वो, जाहिर है उनको इल्म नहीं होता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जहानत नहीं होती, उनके अंदर इस्तेदाद नहीं होती है। अगर वो साइंसेज और टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस और जो है वो इस किस्म की चीजों के अंदर आ जाएं, ये नहीं होता कि कुन जहन होते हैं और किसी काबिल नहीं होते, मेहनत करेंगे। कल सुना नहीं था वो नोबेल प्राइज वाले का, उसने यही कहा था असल में कि मैं जहीन नहीं हूं। तो फिर उन्होंने कहा जी नोबेल प्राइज कैसे मिल गया आपको? उन्होंने कहा मैं मेहनती हूं, जहीन नहीं हूं, मैं मेहनती हूं। जी कि मेहनती तो सभी होते हैं, तो आप कौन सी ऐसी मेहनत कर रहे हैं? मैंने 63, मैंने फिर बच्चों ने बताया वो आदत की किताब के अंदर भी लिखा हुआ था ये वाकया, 63 टाइम्स मैंने केमिस्ट्री की किताब पढ़ी थी। तो भाई अगर कोई जहीन ना भी हो, मेहनत करेगा तो उसको भी जो है वो बड़ा मुकाम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम समझते हैं ना कि नहीं, ये कुरान हदीस में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि कुंद जहन होते हैं, नहीं, कुंद जहन होना कौन सी बुरी बात है? कोई भी मेहनत करके जो है वो अपनी कुंद जहनी को भी जो है वो कर सकता है, कॉम्पनसेट कर सकता है अपनी कुंद जहनी को भी, अगर कुंद जहन है तो। ठीक है, तो भाई ये वजह जो है ना सारी की सारी हमारी है कि हम इसको अहम नहीं समझते। अब देखें, ये जो आपके सदर साहब हैं, मुल्क के सदर, ठीक है, मुल्क के सदर को तो कानूनन इजाजत ही नहीं है कि वो अपना बिजनेस करे। कानूनन मुल्क के सदर को तो जॉब करने की इजाजत नहीं है। क्यों 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 इजाजत नहीं है? क्योंकि भाई वो तो ये कर रहा है ना, मुल्क का निजाम संभाल रहा है। ठीक है, तो अब वो खाएगा कहां से? मुल्क का निजाम संभाल रहा है, बिजनेस करने की उसको इजाजत नहीं है, जॉब करने की उसको इजाजत नहीं है, मुल्क का निजाम संभाल रहा है, अब खाएगा कहां से? कहां से खाता है भाई मुल्क का सदर? मुल्क का वजीर आजम कहां से खाता है? उसको भी तो बिजनेस करने और जॉब करने की इजाजत नहीं होती, कहां से खाते हैं? गवर्नर साहब कहां से खाते हैं? जज साहब कहां से खाते हैं? अपने बच्चों को कहां से खिलाते हैं? अवाम पैसा देती है, अवाम पैसा देती है, कैसे देती है अवाम? मर्जी से नहीं देती, बल्कि उससे जो है वो टैक्स लिया जाता है, आवाम से टैक्स लिया जाता है। टैक्स जो होता है ना, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं देता, वो लिया जा रहा होता है, ठीक है। वो टैक्स इनकम जो आवाम से कलेक्ट की जा रही होती है, उससे जो है वो तनख्वाह दी जा रही होती है, किसको? आपके चीफ जस्टिस को, आपके वजीर आजम को, आपके जो है वो प्रेसिडेंट को, राइट। और आपके जितने पब्लिक पब्लिक सर्वेंट्स हैं, कहां से उनको तनख्वाह मिलती है जिससे कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं? आपके टैक्स के पैसों से मिलती है। लेकिन इसके बावजूद आप इज्जत करते हैं उनकी, इज्जत करते हैं ना पब्लिक सर्वेंट की, इज्जत करते हैं ना आप जो है वो जज साहब की, इज्जत करते हैं ना। हमारे मुल्क में ना होती है वो, दूसरी वजूहत है, लेकिन वैसे तो बड़े इज्जत वाला मुकाम है ये। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो काम करते हैं, प्रेसिडेंट साहब जो काम करते हैं, वजीर आजम साहब जो काम करते हैं, जज साहब जो साहिबा जो काम करती हैं, उस काम की अहमियत है, इस वजह से करने वाले की भी अहमियत है। काम की अहमियत है तो करने वाले की भी अहमियत हो जाती है, लेकिन जब काम की अहमियत नहीं होती तो करने वाले की भी अहमियत नहीं होती। क्या मुश्किल काम है, क्या मुश्किल है इसको समझना, राइट। जब काम की अहमियत नहीं होती तो काम करने वाले की भी अहमियत नहीं होती, तो कोई इज्जत नहीं करता उस शख्स की के जो जो काम कर रहा है उसकी आपके नजर में इज्जत ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा मसला है कि अल्लाह के दीन, अल्लाह के कुरान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सिखाए हुए उलूम की हमारी निगाह में अहमियत नहीं है। इस वजह से हम इनके जो हामिल लोग होते हैं उनको इज्जत नहीं देते, उनको माल नहीं देते, और खाली उनसे डिमांड करते हैं कि वो बगैर माल के काम करें, वो भूखे मर जाएं, अपने बच्चों को भी भूखा मार दें। लेकिन मरी हुई हालत में काम भी करते रहे, भाई मर जाएगा तो फिर काम कैसे करेगा, राइट। लेकिन हम कहते हैं वो मर जाएं, क्योंकि हम उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, हम उनके काम की शक्ल नहीं देखना चाहते, मर जाएं। इसी वजह से फिर हम उनको कुछ देते नहीं है। इसी वजह से तो ये जो पूरा, ये एक पूरा एक एरिया है, ये एक पूरा का पूरा प्रोफेशन है, प्रोफेशन है ये। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि दीन के उलूम की हिफाजत करना, दीन के उलूम में एक्सेल करना और उनको आगे पढ़ाना सिखाना, ये एक पूरा करियर है, ये एक पूरा करियर है। जिस तरह डॉक्टरी एक करियर होता है, लीगल जो है वो एक करियर होता है, और आपका साइंसदानी जो है वो एक करियर होता है, इंजीनियरिंग एक करियर होता है, भाई दीनी उलूम का भी एक पूरा का पूरा करियर है, ये पूरा एक प्रोफेशन है ये, ठीक है ना। एंड दिस इज सपोज टू बी सपोर्टेड, सपोज टू बी सपोर्टेड बाय द मुस्लिम्स, राइट। अगर हुकूमत नहीं सपोर्ट करती तो क्या हुआ, हुकूमत नहीं सपोर्ट करती, अब हम मुसलमान नहीं है क्या, वो क्यों नहीं सपोर्ट करते, ठीक है। तो भाई उनको तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं होनी चाहिए कि हमारा दाल हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी, उनको तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए इस चीज की। इसकी फिक्र जो है ये तो हम जैसे आवाम को होनी चाहिए कि उनका दाल रोटी कैसे चल रहा है, कैसे उनके जो है वो मामला चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये फिक्र खत्म हो गई, एक तो अल्लाह ने उठा करके जमीन पर दे मारा ना सब सारे के सारे मुसलमानों, ठीक है, फिक्र खत्म कर दी ना तुमने इस्लाम की, तुमने जो है वो दीन की जो है वो अहमियत को खत्म कर दिया। अल्लाह ने भी क्या, क्योंकि दीन किसका था, मौलवी का दीन तो नहीं था, दीन मौलवी का तो नहीं था, दीन तो अल्लाह का था ना, ठीक है ना। और अल्लाह जो है वो कोई मजबूर महज तो नहीं है, ठीक है। अल्लाह ने भी ना फिर उसके बाद दिखाई ये सबको, तुम भाड़ में जाओ तुम सारे के सारे, ठीक है ना। क्या मतलब भाड़ क्या होती है, जहन्नुम, जहन्नुम में जाओ तुम सारे के सारे, तुम्हें मेरे दीन की फिक्र नहीं है, राइट। तुम्हें साइंसेस की इतनी फिक्र है, तुम्हें जो है वो अपनी लेबोरेटरीज की, कि जो है ना वो लैब में जो काम कर रहा होता है ना, रिसर्च वर्क जो कर रहा होता है लैब के अंदर, तो उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, बिल्कुल तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तवज्जो के साथ लैब में काम करें, बिल्कुल यकसुई के साथ आप लैब में काम करें, आपको बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बड़ी अच्छी तनख्वाह देंगे, हम आपको हर किस्म के मसाइल से जो है ना वो फारिग कर देंगे, क्योंकि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, ठीक है। किन चीजों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जमादात की या नबातात की, हत्ता के काफिरों के मुल्कों में तो जाएं तो हैवानात के ऊपर भी जो रिसर्च कर रहे होते हैं ना, जानवरों के ऊपर जो रिसर्च कर रहे होते हैं, उनको भी जो है इतनी इतनी ग्रांट्स मिल रही होती हैं, राइट? जमादात पे, मिनरल्स के ऊपर और जमीन की चीजों के ऊपर जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जमादात सबसे कमतर मखलूक उस पर जो रिसर्च कर रहे होते हैं उनको ग्रांट्स मिल रही होती है। यूनिवर्सिटी वाले क्या कर रहे होते हैं, कोई रूहानियत पे रिसर्च कर रहे होते हैं बैठ करके? नहीं, जमादात, नबातात और हैवानात पे रिसर्च कर रहे होते हैं। ग्रांट्स कितनी मिलती हैं उनको, है ना? और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं ग्रांट देती है, बल्कि बड़े बड़े इदारे ग्रांट दे रहे होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। रैंड फाउंडेशन और ये जो बड़े बड़े मशहूर, जिनके हम लेकर के जो है वो कहते हैं जी दज्जाल आएगा, और दज्जाल जो है ना वो फ्री मेसन्स का सपोर्टेड होगा, और रैंड कॉरपोरेशन जो है वो जो दज्जाल को सपोर्ट करती है, राइट? और भाई रैंड कॉरपोरेशन ने ये नहीं देखा, वो अपने रिसर्च जो जो रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च पर दज्जाल को सपोर्ट करेगी, तो उस रिसर्च को किसने सपोर्ट किया? यही रैंड कॉरपोरेशन जो है वो उन रिसर्चर्स को सपोर्ट कर रही होती है। ये हार्वर्ड, ये कोलंबिया, ये जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इनको ये इदारे सपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि तुम यकसुई से काम करो और बेहतर से बेहतर चीज बनाओ। क्या दीन के अंदर रिसर्च की जरूरत नहीं है? ये जो मॉडर्न मसाइल आते रहते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी मसाइल आते रहते हैं, इनके बारे में दीन क्या कहता है, कैसे जो है वो लोगों को गाइड करना है, लोगों की मसाइल का क्या हल निकालना है, कैसे उनको जो है वो जवाब देना है, ये इसके लिए रिसर्च की जरूरत नहीं होती? ऑफ कोर्स इसके लिए रिसर्च की जरूरत होती है। ये दारुल इफ्ता जो हैं, ये हमारी लैब्स हैं, ये हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, राइट? तो मुसलमान क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है इनको? इसलिए कि मुसलमान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है आखिरत के बारे में। मुसलमान भी इंटरेस्टेड कैसे है, किन चीजों में? जमादात, नबातात, हैवानात। मुसलमान की भी इंटरेस्ट यही है, ठीक? जमादात सोने चांदी हो, या मिनरल्स हो, या प्लैटिनम हो, या गैस हो, या पानी हो, या फलाना हो, या ढमकाना हो, ठीक है ना? जो काफिर की तरजीहात, वही मुसलमान की तरजीहात, ठीक है? अब उसके ऊपर कहते हैं जी तनख्वाह क्यों लेते हैं, इनको तो लिल्लाह काम करना चाहिए, इनको तो अल्लाह की खातिर काम करना चाहिए, तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए इनको, ठीक है? जहालत जाहिर है, लॉर्ड मुंह काले के तालीम याफ्ता, तालीम पाए हुए, फिर वो ऐसी बातें करेंगे ना, जाहिल के जाहिल, ठीक है? ये बातें आजिज क्यों कहता है? ताकि जो हमारे ये बुत है ना अपने बारे में, ये हमने बड़े बड़े खुदा बनाए हुए हैं कि हम बड़े आलिम हैं, हम बड़े अकलमंद हैं, हम बड़े जो है ना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारी सोच है, और हम बहुत समझते हैं सारे मसलों को, ये आजिज जाहिल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करता है? इसलिए इस्तेमाल करता है, जानबूझ करके इस्तेमाल करता है, ताकि ये बुत टूटे, ये बुत टूटे, ठीक है ना? और दलील के साथ बात करिए, ऐसे खाम खाम आपको जाहिल बोलना नहीं शुरू कर दिया, मैं खुद अपने आप को इसमें शामिल कर दें, ठीक है? तो मैसेजेस काफी सारे आए हुए थे, साजिद ने पढ़े नहीं, बहुत सारी बातें चल रही थी इस वजह से। यहाँ पे क्या उन्होंने लिखा, मर्दों में पहले जरा देख लेते हैं। वमा कान अलमुमिनून लियन फिरु काफा फलौला नफरम मिन कुल्ले फिरकते मिनहुम ताइफा लियतफक्कहू फिद दीन। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या हुक्म दिया कि तुम्हारे दरमियान एक जमात होनी चाहिए जो कि यतफक्कहू फिद दीन, यानी दीन में वो रिसर्च करें, घुस जाए दीन के उलूम के अंदर और गहराई में चले जाएं। लियतफक्कहू का ये मतलब है गहराई में चले जाएं वो दीन के उलूम के, दीन के, राइट? ये अल्लाह का हुक्म है, और यही जो है वो मदारिस का काम है। भाई क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं उनको? क्योंकि तुम्हारे नजदीक भाई जमादात, नबातात और हैवानात की अहमियत है, और किसी चीज की अहमियत ही नहीं, ठीक है? तुम सैंडविच बन गए भाई, दो गालिबों के आपस की साजिश और लड़ाई के दरमियान सैंडविच बन गए, ये कहाँ से आ गए? अवाम के पैसों पर पलते हैं, अवाम जो है ना वो अल्लाह की रहमत से पलते हैं, वरना वो जाएंगे जहन्नुम में सारे के सारे। तो क्यों नहीं करते फिर वो अल्लाह के दीन को सपोर्ट? एक पाकिस्तानी शख्स हमारे ऑफिस के पास हारिस का काम करता है, इस चीज से बात, हाँ उस बात से, उससे बातचीत करके पता चला कि वो 8 साल का उसने आलिम कोर्स किया, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। सऊदी अरब में देख लें, आपको हजारों उलमाए कराम मिल जाएंगे जो पता है क्या काम कर रहे हैं, हारिस का काम कर रहे हैं, यानी केयर टेकर ऑफ अ बिल्डिंग, या वो जो है वो सामान ढोने का काम कर रहे हैं या मजदूर का काम कर रहे हैं, राइट। बिल्डिंग बनाने की मजदूरी कौन कर रहा है? आलिम दीन। और मुफ्ती साहब क्या कर रहे होंगे? ग्रोसरी स्टोर के ऊपर वो काम कर रहे होंगे, ग्रोसरी का काम कर रहे होंगे, ठीक है, यानी आटे दाल का वो वहां भी ये परचून का परचून की दुकान के ऊपर काम कौन है? मुफ्ती साहब हैं, जिन्होंने 10 साल जो है ना वो दीनी उलूम हासिल किए हैं, अरबी जुबान जो है वो उसकी तहकीक में वो गए हैं, फनून का इल्म हासिल किया है। क्यों जो है वो परचून की दुकान पे काम कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि कमबख्त आवाम जो है वो उनके इल्म की अहमियत को नहीं मान रही है, इस वजह से, राइट। आजाद साहब का क्या मामूल था तालीम देने का? उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था? हमने सुना है कि वो कुछ वक्त तिजारत करते थे, कुछ वक्त तालीम देते थे। जी, वो कुछ वक्त तिजारत करते थे, कुछ वक्त तालीम देते थे, लेकिन सारे साहब ऐसे नहीं थे भाई। सारे मौलवी जो है वो सारे साहबा को थोड़ी, सारे साहबा जो है वो सारे मौलवी को थोड़ी थे। जो उलूम के अंदर लगे हुए थे वो अलग सहाबा थे, सारे सहाबा उलूम में नहीं लगे हुए थे, ठीक है। और अभी जो आपके सामने सूरह तौबा की आयत पढ़ी है ना, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा जाकर इसकी तफसीर, आयत नंबर 122, ठीक है, आयत नंबर 122 का तफसीर देख लीजिएगा। एक तो ये बात हो गई कि सारे सहाबा जो थे ना वो पार्ट टाइमर्स नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक, भाई आप मौलवी साहब को अबू बकर सिद्दीक के ऊपर, रज़ियल्लाहु के ऊपर क्यों कयास कर रहे हैं? उमर फारूक खत्तान के ऊपर क्यों कयास कर रहे हैं? अब्दुलरहमान बिन औफ खत्तान के ऊपर क्यों कयास कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। सहाबा की एक जमात थी जो कि लियतफक्कहू फिद दीन, ये जो असहाबे सुफा आप सुनते हैं ना, असहाबे सुफा, ठीक है ना, ये फुल टाइम इससे पहली बार, ये पहला जवाब है खाली, पूरा जवाब नहीं है ये पहला जवाब है। और दूसरा जवाब ये है कि जैसे जैसे तफसीलात बढ़ती गई, जैसे जैसे अहवाल पेश आते गए, वैसे वैसे उलूम की तफसीलात भी बढ़ती गई। भाई उलूम का ताल्लुक जो होता है वो अहवाल के साथ होता है ना। उस जमाने के अहवाल सादा, उस जमाने में ये क्या कहते हैं उसको, क्रिप्टो करेंसी होती थी उस जमाने में। उस जमाने में जो बाथरूम होते थे ना वो होते थे आबादी से बाहर, ठीक है, ये तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो शहरों के अंदर होता ही नहीं था, शहर से बाहर जाकर के आप फारिग होकर के आते थे, ठीक है। तो अब वहां के जो बैतुल खला थे, तो उन बैतुल खला के जो शरी मसाइल होंगे वो उस बैतुल खला के हिसाब से होंगे कि आज के बैतुल खला के हिसाब से होंगे? और आज के जो बैतुल खला आपके घर के अंदर होते हैं तो उनके ऊपर आप वो वाले शरी मसाइल एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं जो कि आबादी से बाहर वाले बैतुल खला के ऊपर अप्लाई होते थे? नहीं, जैसे जैसे अहवाल चेंज होते हैं वैसे वैसे उलूम के अंदर भी तफसीलात आती हैं, और जब उलूम में तफसीलात आती हैं तो फिर जो इल्म रखने वाले इंसान होते हैं तो उनकी जिंदगी के औकात में 24 घंटे की बजाय उनका एक दिन जो होता है ना वो 48 घंटे का हो जाता है। और जैसे जैसे और तफसीलात बढ़ती हैं तो आलिम साहब के दिन की जो औकात होते हैं वो 78 आवर्स के हो जाते हैं, वो एक्सटेंड करते रहते हैं जैसे जैसे ज्यादा इल्म आता है। नहीं भाई, उन्होंने उसी टाइम के वही 24 घंटे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी होते थे, वही 24 घंटे सहाबा की जिंदगी में होते थे, और आज के आलिम दीन की जिंदगी में भी वही 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो अब वो उस 24 घंटे के अंदर इतने तफसीली उलूम और सलाहियतें भी जाहिर कम हो गई, तकवा भी जाहिर कम हो गया उस दिन, उस जमाने के मुकाबले में, ठीक है। तो अब उसी 24 घंटे के अंदर दीनी उलूम की जो तफसीलात हैं तो वो फिर साथ साथ अगर वो जॉब करेगा, साथ साथ अगर वो बिजनेस करेगा, तो फिर इन तफसीलात को वो कैसे मैनेज करेगा, ठीक है। ये तो दूसरा जवाब है। पहला जवाब तो ये है कि हर सहाबी जो है ना वो आलिम दीन वाला काम नहीं कर रहा होता, तो जो कि आप आज का काम कर रहे हैं। हाँ, ये हदीस सुनी थी हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, फलानी हदीस सुनी थी, वो हदीस बता दी, ठीक है। लेकिन फिकही तफसीलात, उनसे डिराइव करना, रिसर्च का काम करना, ये तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, बल्कि अबू हुरैरा ना तो कसरत हदीस याद करने से ज्यादा मशहूर है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये फकाहत अलग चीज थी, ये फुल टाइम डेडिकेटेड थे उलूम के लिए, इसी वजह से कमाई वमाई इनके पास कोई नहीं थी। हत्ता कि जब वफात का वक्त आया तो उस्मान ने गनी रतन आकर के पूछ रहे हैं आपकी बेटियां हैं तो आपने बेटियों के लिए क्या छोड़ा, क्या जवाब दिया उन्होंने? मैंने वो सूरह मुल्क सूरह वाकया उनको याद करवा दिए बेटियों को, कमाई उमाई का जरिया कोई नहीं था, थोड़ा बहुत हदिया वदिया आ गया बस गुजारा हो गया। ठीक है तो भाई ये सब बातें हैं जी, जिन्होंने क्या लिखा ख्वातीन में जी सही, मेरे शोहर साहब रिसर्चर हैं, उनको माहाना स्टाइपेंड भी मिलता है और बैरून मुल्क रिसर्च की वजह से जाना हो तो खर्चा भी दिया जाता है जो कि लाखों में होता है, वहां अगर उन्होंने अपने लिए कोई टूथपेस्ट भी खरीदा हो तो उसके भी पैसे दिए जाते हैं। इसको ऑफिस के अंदर TADA भी कहते हैं, TADA ट्रेवल अलाउंस, और DSD से क्या बनता है जो भी डिनर अलाउंस वगैरह, पूरा अलाउंस मिलता है और बहुत ज्यादा रिसर्चर को पैसे मिलते हैं। क्यों? इसलिए कि मुमलिकत जो होती है ना वो रिसर्चर्स की रिसर्च के ऊपर तरक्की कर रही होती है, राइट? और दीन का मामला क्या, वही यतीम, उसमें तो ना रिसर्च की जरूरत है ना उसके अंदर डेडिकेशन की जरूरत है ना उसके अंदर जो है वो डियरनेस अलाउंस होता है वो। सही, मुझे आज पता चला है, हमने तो बड़े TADA कमाए लेकिन डियरनेस अलाउंस मुझे मैंने कभी नहीं सुना था। बहरहाल अच्छा, यहाँ पे खवातीन में जो मैसेज आए तो तुम पढ़ करके एक दफा बस क्लास खत्म कर देते हैं, अभी वक्त कम भी हो गया है। हाँ बहुत सारी चीजें अब ऐड हो गई हैं, पहले वो सारी चीजें नहीं होती थी, अब तो फोन के बगैर जरूरियात भी पूरी नहीं होती बहुत सारी, पुराने जमाने में तो फोन भी नहीं होता था। लेकिन ये रीजन उन अल्लाह वालों के लिए भी हो सकता है जो बयानात वगैरह करते हैं, उनको भी तो घर चलाना होता है। ठीक है हाँ, वो भी तो दीनी का काम है ना, मतलब दीन का काम सिर्फ जो है वो फिकही तफसीलात बताना भी थोड़ी है, बल्कि तजकिये का काम करना और जो है वो लोगों के मसाइल को में उनकी जो है रहनुमाई करना, जाती मसाइल में रहनुमाई करना, ये तो मुफ्ती साहब नहीं कर रहे होते ही वाले काम अक्सर उनमें से, बल्कि ये तो मशाइख का काम होता है। तो बिल्कुल वही मामला है, जाहिरी उलूम हो या बातनी उलूम हो, इन सब का यही सिलसिला हमारे दीन के अंदर चलता है। जहां अवाम जो है ना वो कदर कर लेती है ना फिर अवाम का फायदा हो जाता है, और जहां अवाम का कदर नहीं करती तो जाहिर सी बात है मौलवी साहब जो है वो ग्रोसरी का काम कर रहे हैं, शेख साहब जो है वो उल्टे सीधे कामों के अंदर लगे हुए हैं अपनी जरूरियात के कामों के अंदर, फिर जाहिर है अवाम को ही इन दी एंड अवाम को नुकसान हो रहा होता है। ठीक है अच्छा, और क्या लिखा था कि लोगों को उनकी कदर हासिल हो हालात में, हाई सकते हैं। अच्छा मर्दों में क्या, अच्छा ये मसला ये है कि एवरीवन में कोई जवाब दे तो वो मुझे ना नजर आ जाता है इसी विंडो के ऊपर, मोबाइल की वजह से वक्त में बरकत खत्म हो गई, ट्रैवल अलाउंस डेली अलाउंस, हाँ डेली अलाउंस, डेली अलाउंस बोलता हूँ बस। खैर एनीवे चले, बहुत देर हो गई, एक मैसेज आया हुआ था वो मैंने देखा नहीं है, वो शायद लेफ्ट भी हो गए। इज इट जस्ट फॉर अदर्स लाइक वी शुडंट जज अदर्स ड्यू टू देयर कंडीशन हालात, और शुड वी नॉट इवन जज आवरसेल्व बाय आवर कंडीशन, दे आल्सो हैव देयर फैमिलीज एंड देयर ओन हैव अदर सोर्सेस ऑफ अर्निंग। ठीक है जज़ाकुमुल्लाह खैर, यहाँ पे हम आज की क्लास खत्म करते हैं, बाकी जितना भी रह गया वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक से। वा आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।